नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नमः ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 आधा 1 श्लोक 45 और 46 के दो श्लोक के लिए बताया है, इसलिए दो श्लोक का आलोचना करेंगे। क्योंकि पहला श्लोक में चार लाइन सिर्फ तात्पर्य है, इसलिए प्रभु जी ने कहे दो श्लोक लेने के लिए। पहला श्लोक उच्चारण कीजिएगा मेरे पीछे। जैन जवाना यथा धर्मो धर्म वह समीहितः सैव तत् फलम् भुङ्क्ते तथा तावत् मूत्र वै। शब्दानुवाद। जेन जिस व्यक्ति द्वारा, जवान जिस हद तक, यथा जिस रीति से अधर्म अधार्मिक कार्य, धर्म धार्मिक कार्य बा अथवा यह इस जीवन में समहित संपन्न हुए स उह व्यक्ति एव निसंदेह तत्फलम उसका विशेष फल भुंगते आनंद लेता है या कष्ट उठाता है तथा उस तरह से तावत उसी हद तक अमूत्र अगले जीवन में वही निसंदेह। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फल को भोग करता है या कष्ट उठाता है। तात्पर्य भगवद गीता 14:18 में कहा गया है कि ऊर्धम गच्छन्ति सतोस्ता मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जघन्ना गुणवृत्तिस्ता अध गच्छन्ति तामसा। जो लोग सतगुणी होते हैं वे देवता बनने के लिए उच्चतर लोक में भेज दिए जाते हैं। जो सामान्य रीति से कर्म करते हैं और अत्यधिक पाप कर्म नहीं करते हैं वे इस मध्य लोक में रहते हैं, तथा जो अत्यंत घृणित पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक के जीवन में नीचे जाना पड़ता है। अतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरुसुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतमसागण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनसहगण ललिता श्रीविशाखानीतांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रातःकालीन सत्संग में आप सभी को कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग बहुत भाग्यवान जो कि भागवत कक्षा में आए हो। थोड़ा कृपा करके आगे की तरफ आ जाइए थोड़ा से, क्योंकि बाद में जो आते हैं पीछे बैठेंगे, क्योंकि कुछ भक्त लोग होते हैं आते तो बाद में पीछे बैठने में उनको भी शर्म लगता है, फिर बाहर खड़े रहते हैं। हम कभी किसको नहीं चाहते बाहर खड़े होके कथा सुने। भागवत ऐसे वस्तु है जो कि हमें भागवत का प्रति जब तक प्रेम नहीं होगा तो भगवान का प्रति प्रेम नहीं। भगवान का प्रति प्रेम करने के पहले हमें भागवत का प्रति प्रेम करना पड़ेगा। शास्त्रगत प्रमाण के अनुसार एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपको देता हूं जो कि संसारगत एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में। हमें कभी इसी शरीर से, ये मनुष्य शरीर से कभी किसको प्यार करते हैं, जब हमारा वो शारीरिक संबंध है, हमें जानते हैं ये शरीर नश्वर है, फिर भी हमें जब वो प्यार हो जाता है, किसके प्रति हमें प्रेम हो जाता है, तब वो प्रेम के समय पे हमें कभी समय नहीं देखते हैं, कभी टाइम नहीं देखते हैं। देखते हैं बोलिए, नहीं देखा जाता है। लेकिन भागवत कक्ष में आने के लिए हमें पहले समय देखना पड़ता है, कितना बजे खत्म होगा, कितना बजे चालू होगा। चालू होने का पहले तो नहीं, खत्म कितना बजे होगा, यह हमारा प्रेम है। सही तो भागवत का प्रति कितना प्रेम है इससे मालूम पड़ता है। तो भागवत का प्रति प्रेम नहीं तो भगवान का प्रति क्या प्रेम रहेगा। बहुत सारे शास्त्र में वर्णन है भागवत का प्रति रुचि होना, सिर्फ रुचि को पैदा करने के लिए, भागवत का प्रति प्रीति को पैदा करने के लिए, प्रकट करने के लिए करोड़ों जन्म हमारा लग सकता है। हमें बारंबार सुनते हैं भागवत और सुनते आ रहा है, लेकिन हमारा प्रीति नहीं हो रहा है, रुचि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ रुकावटी है, कुछ रुकावटी है, अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो हमें चर्चा का विषय है, आप लोग का पत्र बहुत दिन से सुन के आ रहा है, अजामिल का जीवन का इतिहास। जो आज का जो श्लोक है, ये श्लोक में बताते हैं, जैन जवान यथा धर्म धर्म वह समिहित। जैन मतलब जिस व्यक्ति द्वारा धर्म और अधर्म दोनों पल्ला है। जिस प्रकार आप कभी निकिति देखा, निकिति तो पहले निकिति होता था ना, निकिति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तराजू, क्या बोलते हैं हिंदी में, तराजू। तराजू का दो पल्ला होता है ना, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ दो पल्ला लगा हुआ है, एक धर्म का पल्ला है, एक अधर्म का पल्ला है। ये सब बैलेंस हो जाता है। और ये धर्म अधर्म से कहते हैं, धर्म करते हैं तो व्यक्ति कहते हैं पुण्य कर रहे हैं, अधर्म करता है तो व्यक्ति क्या कहता है, पाप कर रहा है। धर्म अधर्म दो पल्ला है, दो पल्ला से पाप और पुण्य हुआ, और ये पाप पुण्य का बजाय से व्यक्ति सुखी होता है और फिर व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन व्यक्ति को अभी तक मालूम नहीं धर्म क्या है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रश्न पूछो, प्रत्येक व्यक्ति कहता है मैं धर्म कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं बोलता है मैं अधर्म कर रहा हूं। कोई बोलता है मैं अधर्म कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए कहते हैं मनमानी धर्म, इसको कहते हैं मनमानी धर्म। मन में जो आता है वही विचार लेकर कर लेता है। लेकिन भागवत में क्या प्रमाण देते हैं, भागवत में जमदूत का जो उवाच आया 40 नंबर श्लोक में पहला शब्द बताया है वेद प्रणहितो धर्म, पहला शब्द ही है। ऐसा नहीं बताया कि वेद प्रणहितो अधर्म, नहीं बताया वेद प्रणहितो धर्म। और भागवत में और श्लोक आता है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहे 4:7 नंबर श्लोक, भक्त लोग सभी को मालूम है ना ये श्लोक, सभी को याद रखना चाहिए ये श्लोक भागवत के 4:7 नंबर श्लोक, याद है कि नहीं है 4:7 नंबर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभितानम अधर्मस्य तदात्मना, ये श्लोक सभी को याद रहना चाहिए। जहां पे अधर्म परिव्याप्त हो जाता है धर्म को स्थापना करने के लिए, अधर्म को खंडन करने के लिए भगवान प्रत्येक युग में भगवान आते हैं, भगवान स्वयं कह रहे भगवद्गीता से। इसलिए वेद प्रणहित धर्म, वेद में जो वर्णन किया गया है वेद निषिद्ध, वेद में जो निषेध किया गया है वो है अधर्म, और जो वेद विहित है वेद में जो कहा गया है वो धर्म है। लेकिन लोग अभी शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र को मानते नहीं, इसीलिए कहते हैं मनमानी धर्म करते हैं। ये मनमानी धर्म करने का नाते है पाप कर बैठते और पाप से दुखी होते हैं, सुख मिलता नहीं। प्रयास करता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय में प्रति क्षण में सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। आप जितने सब बैठे हैं सभी लोग को, सही है कि नहीं, सभी लोग चाहते हैं सुख मिलेगा कहां, सुख कोई पेड़ से मिल रहा है, सुख कोई दुकान से मिल रहा है, सुख है कहां अभी तो क्या हम लोग को भी मालूम नहीं सुख है कहां। सुख एक ही जगह से, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दस नहीं, 20 जगह नहीं, सुख एक ही जगह पे, कहां पे है, भगवान का चरण पे। जो व्यक्ति भगवान का चरण पे आया, जो व्यक्ति भगवान का शरण लिया, जो व्यक्ति प्रभु का भक्ति किया, जो व्यक्ति भगवान का नाम रटा, वही व्यक्ति सुखी। सुख कोई दुकान पे नहीं मिल रहा है, आप जाके खरीदी कर लो किसी दुकान से मिल जाए, सुख प्रभु अपना चरण पे छुपा कर रखा है। सुखी बनना चाहते तो प्रभु का चरण पे जाना पड़ेगा, प्रभु का भक्ति करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये धर्म और अधर्म का बजाय से प्रभुपाद यहां पे मेंशन करते हैं कि श्लोक गीता का श्लोक 14:18 का, ये धर्म का और अधर्म का बजाय से हमें ऊपर नीचे चलते हैं। ये जो जन्म मृत्यु चक्र होता है ये चक्र के अंदर हमें घूमते हैं। लेकिन ही हमें जान लेना चाहिए ना हमें धर्म करना है ना अधर्म करना, इसका ऊपर उठना अगले श्लोक में आएगा। हमें त्रिगुणातीत होना है, हमें सतोगुण में नहीं रहना, रजोगुण में नहीं, तमोगुण में नहीं, किसी स्थिति पर रहना है शुद्ध सतोस्तर। सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है, इसलिए कहा जाता है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सतोस्ता, सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है। और स्वर्गलोक को जाने के लिए सतोगुणी में रहना पड़ेगा, सतोगुणी कर्म, सतोगुणी खाद्य, सतोगुणी आहार व्यवहार, ये सब आचार व्यवहार, तो व्यक्ति स्वर्गलोक को जाएगा। और वो मध्य तिष्ठति राजसा, रजोगुणी व्यक्ति इसी लोक में रहेगा मर्त्य लोक में। अधो गच्छन्ति तामसा, और तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है नीचे का लोक में जाता है, नीचे का लोक में मतलब नरक लोक में जाता है। ये पे गीता ये प्रमाण दे दे रहा है ऑलरेडी व्यक्ति को कहां कहां जाना पड़ता है। लेकिन हमें इसका अंदर नहीं घूमना है, भक्तों लोग के लिए नहीं, भक्त लोग को उसका ऊपर जाना है। कोई व्यक्ति बोलेगा सत्वगुणी में खाद्य खा रहा हूं, अब नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, संसार में बहू सारी है जो कि अनमैरिड है, मैरिज नहीं किया, क्या यह ब्रह्मचारी है? बोलिए, क्या यह ब्रह्मचारी है? नहीं। शास्त्र प्रमाण देता है ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, चर्य मतलब क्या है, चर्चा करना, ईश्वर का बारे में चर्चा करने वाले, माने मनन करना है ईश्वर का बारे में, मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म आचरित इति ब्रह्मचारी, ब्रह्म को आचरण करना है, भगवान का बारे में सोचना, भगवान का बारे में चिंतन प्रत्येक मुहूर्त में, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। कोई सिर्फ शादी कर ले नहीं करना, ये ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता है, जब ईश्वर के बारे में चिंतन नहीं करता है। आज का दुनिया में आप देखिए बहुत सारे नेता लोग है बिना शादी में रह रहे, क्या ब्रह्मचारी है? इसलिए कहते हैं सत्वगुणी में रहना मतलब क्या है। बहुत सारे लोग है सत्वगुणी में रहते हैं, सत्वगुणी में जो रहते हैं, जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, उसको कहते हैं सत्वगुणी। तब सत्वगुणी में रहने वाले व्यक्ति स्वर्ग लोक जाएगा, लेकिन हम लोग को उसका ऊपर जाना है, मतलब क्या करना है, सत्वगुणी में जो रहते हैं वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते। बहुत सारे लोग है जो कि नॉनवेज नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते है, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाते, लेकिन भक्त उसका ऊपर में। क्यों ऊपर है? क्योंकि भगवान को भोग लगा के भोजन करता है। यहां कहता है ना, कहते हैं भुंकते तत् फलम भुंकते, शब्द आया भुंकते शब्द, भोग करना। और भोक्ता कौन है पहले जानना चाहिए, भोक्ता कौन है, भोगने वाले कौन है, हमें भोक्ता नहीं है। यही भुंकते शब्द आप उपदेशामृत का चौथा नंबर श्लोक, उपदेशामृत का चौथा नंबर श्लोक पढ़ोगे, इसमें आता है ददाति प्रतिघुनाति गृह आख्याति पृछति आहुत भुंक्ते भोजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम्। ये उपदेशामृत का श्लोक है, इसमें एक ही श्लोक आया भुंक्ते भोजयते चैव ददाति प्रतिघुनाति, और भक्त के लिए दान करना है ददाति और प्रतिघुनाति, फिर दान देना है, दान लेना भी है, ददाति प्रतिघुनाति। इसमें छह प्रकार है, छह चीज जो कि प्रीति को बढ़ाता है, और भक्त समाज के लिए यह श्लोक है, ये चौथा नंबर श्लोक है, सिर्फ भक्त के लिए, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। और आप तीन श्लोक आप पढ़ा होगा भक्ति उपदेशामृत में, तीन श्लोक अलग अलग है। पहला श्लोक है किस प्रकार शिष्य ग्रहण करना है, गुरु का क्या कर्तव्य है। दूसरा श्लोक में हाँ भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है, ये तीन श्लोक में है। लेकिन ये श्लोक जो है ददाति प्रतिगुणाति, ये वैष्णव लोक के लिए, छह चीज कैसा ग्रहण करना है, छह चीज की प्रतिदान देना है। तब कहने का अर्थ है भुंकते, क्योंकि हमारा जो कर्म फल है हमको भोगना पड़ता है, और भोग के हमको ये तीन लोक में हमको वास मिलता है, स्वर्ग मर्त्य और पाताल लोक। लेकिन भक्त बनने का नाते भक्ति जब करता है व्यक्ति उसका ऊपर जाता है शुद्ध सात्विक स्तर, इसको कहते हैं शुद्ध सात्विक स्तर पर, मतलब उच्च लोक, जो सर्वोच्च उच्च लोक में जाने का बाद फिर वापस नहीं आता है। और वो उच्च लोक को प्राप्त करने के लिए भगवान का शरण पे रह के प्रभु का भक्ति करना पड़ेगा। फिर भक्ति में कभी कभी कुछ बाधक आता है, लेकिन ये बाधक होने का नाते फिर भी आपको सहन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ दे, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त के लिए हमेशा के लिए परीक्षा आएगा, हमेशा के लिए परीक्षा, भक्त के लिए हमेशा परीक्षा है, परीक्षा से उत्तीर्ण होने के लिए आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भक्त को स्थित प्रज्ञ बनना है, श्रीमद भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ, भक्त के लिए स्थित प्रज्ञ शब्द आया, जो कि भक्त कैसा होना चाहिए। श्रीमद भगवद गीता का श्लोक नंबर दो, अध्याय नंबर दो श्लोक नंबर 55 में स्थित प्रज्ञ दो जगह पे आया, दो शब्द, ये स्थित प्रज्ञ जो शब्द है दो श्लोक में आया, पहला 54 और दूसरा श्लोक है 55। पहला श्लोक में अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है, कैसा स्थिर रह के कैसा रहता है, भक्त का लक्षण कैसा है, कैसा बातचीत करता है, कैसा चलता है, अर्जुन पूछता है 54 नंबर श्लोक में। और 55 श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रजाहति जदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मने बात्मना तुष्ट अस्त प्रज्ञा तदोच्यते। प्रज्ञा का अर्थ है और उसका चलना फिरना बोलना संपूर्ण तरीका अलग है, इसलिए भक्त को देख के लोग भक्त बनते हैं, भक्त का चाली चलन आचार व्यवहार देख के, इसलिए हमें किसी प्रकार आचार व्यवहार करना है। पहले सीखा ही हमारा, पहले हमें प्राइमरी स्टेज में कैसा रहना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें बस माला पहन लिया और झोली तो मिल गई है बस, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति देखता है, सारा जगत देखता है, आप थोड़ी से गलती करेंगे ना हजार तरफ चारों दिशा से फोन आ जाएगा, चारों दिशा से थोड़ी से गलती करने मात्र से। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते थे सफेद ड्रेस आप लोग सब पहने हैं, सफेद ड्रेस में थोड़ी से काला दाग आ जाए, सही, थोड़ी से काला दाग इमीडिएटली सभी को दिखाई देगा। संसार में कर्मी लोग कुछ भी करें संसार का लोग इसको नहीं देखेंगे, लेकिन भक्त थोड़ी से कुछ भी कर लेता है गलत, इमीडिएटली सभी लोग अंगूठी दिखाने में सभी लगे पड़ जाए। तब स्थित प्रज्ञा, इसलिए कहते हैं भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए। और कहते हैं भक्ति से हमारा बहुत सारा बाधाओं आता है और बाधाएं आएगा। ये देखिए हम तो अभी सुन रहे हैं अजामिल, अजामिल इतने बड़े भक्त, उनका चरित्र सुनोगे बहुत सारा चीज, बहुत सारा शास्त्र में प्रमाण दिया गया, इतने बड़े भक्त था, थोड़ी सी आसक्त मोह जम गया, मोह आ गया, क्या क्या घटना हुई आगे जाके, तब भक्ति मार्ग में आएगा। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान मान माम प्रपदंते वासुदेव शर्ममेति सह महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं कहा गया, सुदुर्लभ। और मनुष्य जीवन दुर्लभ है, प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, लेकिन भगवद गीता का श्लोक के अनुसार कहा गया मनुष्य जन्म जो मिला है, जो भगवान का शरण पे आके भक्ति करने लगता है, इसको कहा गया सुदुर्लभ। बहु नाम, कितने जन्म हमारा बीत चुका है, बीतने का बाद फिर हमको जब जानकारी मिल जाता है ज्ञान मान माम प्रपदंते, जब ये ज्ञान हमको मालूम पड़ जाता है तब हमें भक्ति से कभी हटना नहीं चाहिए। जो भक्ति में दृढ़ता रहता है, दृढ़ का साथ भक्ति करता है, उसको कहते हैं सुदुर्लभ। फिर कहते हैं बहु जन्म जदि करे श्रवण कीर्तन तबहु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण का जो प्रेम धन प्राप्त करने के लिए बहु जन्म, कितने जन्म बीत चुका है, हमें श्रवण कीर्तन कर रहा है, सुन रहे हैं, बारंबार सुन रहे हैं, भागवत तो प्रत्येक दिन होता है, नित्यम भागवत सेवाया, प्रत्येक दिन ही सुन रहा है, लेकिन अंदर का जो चीज है ना वो रोका है, वो रोका है, ये खोलता नहीं, साफ नहीं हो रहा है। कितनी बार हमें सुन रहा है बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पद प्रेमधन। कृष्ण के प्रति प्रेम तो होना दूर की बात है, अभी भक्त के प्रति भी प्रेम नहीं हो रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्त मेरे से बड़े हैं, अहम भक्त पराधीना, हमें भक्त के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है, भगवान का प्रेम तो दूर की बात है। पहले भक्त के प्रति प्रेम होगा तो भगवान का प्रति प्रेम होगा, भक्त का प्रति प्रेम नहीं तो भगवान का प्रति प्रेम नहीं। भक्त का प्रेम करना सीखो पहले, हमें भक्त कोई भी किसी भक्त को देखता है तो हमें तो वही साइड होकर निकल जाते हैं, महाराज लोग आते हैं तो हमें वही साइड होकर, कहीं को झुकना पड़ेगा ना, कमर दर्द है, क्या हमारा प्रेम है। ये जो हम जो प्रणाम भी करते हैं, हमें प्रणाम किसको करते हैं अभी तक हमको मालूम नहीं, प्रणाम हमें किसको कर रहा है, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में प्रभु विराजमान, ये प्रणाम स्वीकारने का अधिकार करने का शक्ति प्रभु का हाथ में है। प्रभु ये प्रणाम को स्वीकार करते हैं। सांसारिक जगत में सांसारिक जड़ शरीर कभी भी प्रणाम का स्वीकार नहीं कर सकता है। प्रणाम करने का स्वीकार का अधिकार कौन है? परमात्मा रूप में प्रभु विराजमान, वो स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें परमात्मा रूप में प्रभु को प्रणाम कर रहा है ये जानना चाहिए, तब जाकर हमारा प्रेम बढ़ेगा। जब चैतन्य महाप्रभु किसी भी भक्त को देखते थे, आप देखिए किसी भी भक्त को, चैतन्य महाप्रभु लीला में देखिए, चैतन्य चरितामृत में है, चैतन्य भागवत में भी है, चैतन्य मंगल में भी है, किसी भी देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे। जब भी किसी भी भक्त को देखते थे पहले गले मिलते थे, कभी जिसको भी देखते थे क्या करते थे, गले मिलते थे। प्रेम कैसा बढ़ेगा। इसीलिए यहां पे कहते हैं हमें बहुत जन्म हो के हमें श्रवण कीर्तन करते हैं लेकिन हमारा अभी तक भी प्रेम जागृत नहीं हुआ। तब हमें दूसरा श्लोक का ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ये श्लोक का ऊपर इतना ही, दूसरा श्लोक के ऊपर चलते हैं। दूसरा श्लोक मैं पाठ कर रहा हूं। जतेह देव प्रबरह त्रैविध्य उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्य तथान्य अनुमीयते। अनुवाद, हे देवश्रेष्ठ, हम विभिन्न प्रकार के तीन जीवन देखते हैं जो प्रकृति के तीन गुणों के कलमश के कारण है। इस तरह जीव शांत अशांत तथा मूर्ख सुखी और दुखी या इन दोनों के बीच तथा धार्मिक अधार्मिक के या अर्धधार्मिक जाने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन में ये तीन प्रकार की प्रकृतियां इस प्रकार से कर्म करेगी। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुणों के कार्य तथा फल इसी जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण तो कुछ लोग अतीव सुखी है, कुछ अत्यधिक पीड़ित है और कुछ सुख तथा दुख की मिलजुली स्थिति में है। यह प्रकृति के गुण सत्व रज तथा तम गुणों के साथ विगत संगति का परिणाम है, क्योंकि ये विविधाएं इस जीवन में दृष्टिगोचर होती है। अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के संसर्ग के अनुसार अपने अगले जीवन में भी सुखी दुखी या इन दोनों के बीच में होंगे। इसलिए सबसे अच्छी नीति है तो यह है कि अपने को प्रकृति के तीनों गुणों से विलग कर लिया जाए और उनके कलमश से सदैव परे रहा जाए। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने को भगवान की भक्ति में पूरी तरह लगा दे। जैसा कि भगवद्गीता 14:26 में कृष्ण पुष्टि करते हैं, माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समेते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों के लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के पद तक पहुंच जाता है। भगवान की सेवा में पूरी तरह से लीन हुए बिना मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कलम से प्रभावित होता रहता है। अतः वह दुख या सुख तथा दुख के मिले जुले रूप को भोगता है। तो इससे मालूम पड़ जाता है धर्म अधर्म करने मात्र से किस प्रकार सुख और दुख मिलता है। सुख दुख का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है? आप जितने सब बैठे हैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, सुख दुख कोई देखा है, दिखाई देता है? हाँ जी, नहीं दिखाई देता है? जिस प्रकार हवा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना, उसी प्रकार सुख नहीं दिखाई देता है लेकिन सुख क्या करते हैं, महसूस करते हैं। सुख को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं। और ये सुख दुख आता है कहां से, उसका जड़ क्या है, इसका जड़ क्या है, उसका बीज क्या है? हाँ जी, अविद्या से, अविद्या से ये सुख दुख आता है, क्योंकि अज्ञानता से हम क्या करते हैं, धर्म करते हैं अधर्म करते हैं। अविद्या इसका जड़ है, देखा जाए तो कर्म जड़ जो है क्या है, कर्म। हमें किस प्रकार कर्म किया, ये कर्म का बजाय से हमको सुख और दुख मिलता है। और कौन सा जन्म में कौन सा कर्म किया ये स्थगित रहता है, बैंक बैलेंस ऐसा नहीं है एसबीआई बैंक है कि एचडीबीसी बैंक है कि आईसीआईसी बैंक में बैलेंस नहीं, ये सब कर्म फल का बैंक है अलग, जिसे प्रकार पाप का बैंक और पुण्य का बैंक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ दो बैंक अटैच है, जन्म होने का पहले दो बैंक आपके साथ अटैच है, आपको खाता खोलने का जरूरत नहीं पड़ती है, आईडी दिखाना नहीं पड़ता है, बिना आईडी से भगवान आईडी खोल के आपको भेजा है ये जगत में। दो बैंक है, पाप का बैंक है और पुण्य का बैंक है। आप जो कुछ अभी कर्म करोगे वो सब बैंक ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक ही बैंक में बैलेंस हो जाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा बैंक में। आज छुट्टी है, संडे है, छुट्टी है और उसका कोई व्यक्ति है नहीं डिपॉजिट करने के लिए, ये भी नहीं। आप जिस प्रकार कर्म करते तत्क्षण तो बैलेंस हो जाता है, एक सेकंड भी नहीं लगता है, और एक एक सेकंड मुहूर्त का जो भी पुण्य और जो भी पाप किया इमीडिएटली वो बैंक में बैलेंस हो जाता है। और वो समय आने पर, ऐसा नहीं इसी में अभी भोगना है, ऐसा नहीं, वो समय आने पर उसको वो क्या होगा, वो प्रस्फुटित होगा, प्रस्फुटित होगा। समय चाहिए, वो समय नहीं हुआ अभी तक, वो समय जब आ जाएगा वो प्रस्फुटित हो जाएगा। पुण्य किया आपको सुख मिलेगा, पाप किया आपको, और लेकिन संसारगत संसार में रह के हमें सुख और दुख को क्या डेफिनेशन देते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगह पे इस जगत में त्रिगुण में माया द्वारा सब परिचालित है, कभी दुख तो कभी सुख, और कभी कभी ना सुख और दुख होता है, दोनों समान, कभी सुख नहीं मिलता है दुख नहीं मिलता है, दोनों समान बराबर हो जाता है। सुख और दुख का दुख कब मिलता है, अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर जड़ वस्तु देहादि में आत्म अभिमान होने से ही जीव को संसार का दुख भोग करना पड़ता है। जड़ीय वस्तु में मन का संबंध जोड़ने का नाम ही संसार है। जड़ीय वस्तु जो सांसारिक वस्तु का प्रति मन मतलब संबंध जोड़ने मात्र से संसार है, और वही जड़ीय संबंध ही सारे दुख का मूल कारण है। माया भी जीव के स्वरूप का आवरण बिना दोष नहीं करती है, जीव श्री भगवान को भूल जाता है, इसी दोष से माया उसके स्वरूप को आच्छादित कर लेती है और जीव संसार का दुख का भोग करना पड़ता है। मेन कारण क्या है, मेन कारण है भगवान का दास नहीं बने हम, ये दासत्व को भूलने का नाते भगवान ही क्या कर देते हैं, दुख दिलाते हैं भगवान को भूलने का नाते है। क्योंकि भगवान का दास बनने के लिए हम ये धरती पे आए, भगवान दास बना के हमको ये धरती पे भेजा, और प्रत्येक व्यक्ति भी दास बनने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बिना हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करने का मात्र से आपको बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर नहीं आ सकते हैं। भगवान को प्रार्थना किया कि मैं आपका दास बनूंगा, और दास व्यक्ति ही सुख को अनुभूति करता है। अब देखिए भगवान का लीला में नित्यानंद प्रभु दास बने हैं, बने नित्यानंद प्रभु बड़े भाई होके सेवा किए, और ये चैतन्य महाप्रभु का लीला में, और राम का लीला में लक्ष्मण जी सेवा किए ना, ये भी दास बने छोटे भाई होके सेवक रूप में 14 वर्ष गए थे वनवास, 14 वर्ष तक वनवास में सेवा किए। अब सोचो लक्ष्मण जी भी दास बन के, और दास में जो आनंद है और किसी में नहीं, दासत्व को स्वीकार करके देखिए, और पूरी कृष्ण लीला में बलराम जी, बलराम जी भी दास बने हैं भगवान का सभी लीला में। बलराम जी स्वयं क्या बनते हैं, बेड बन जाते हैं, बेड बन जाते हैं, और कृष्ण उसका ऊपर लेट रहे, छत्री बने हैं, भगवान का सब कुछ सेवा में। दास बन के जो आनंद है और किसमें आनंद है, इतना बोलो, इसलिए दास, क्योंकि ये दासत्व को हमें भूल चुके हैं, इसलिए माया आवरण का शक्ति जो है वह हमारा पर आच्छादित कर देता है। भगवान को भुलाने का शक्ति जो है, क्योंकि ये जो माया है ये भगवान से ही प्रकट है, भगवान से ही प्रकट है, भगवान ही माया को रचाया, माया अलग कोई वस्तु नहीं। और ये माया से बचने के लिए फिर भी प्रभु की ही प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान भगवद गीता में प्रमाण किए है, दैवी हस्य गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये माया से बचने के लिए वही प्रभु का पास, प्रभु का पास जाके प्रभु का भजन करना पड़ेगा, तब जाके भगवान ही वो माया को बचा सकते हैं और माया से दूर कर लेंगे। तब यही जो कि हमें भगवान, जो हमारा जो चैतन्य स्वरूप है हमें इसको भूल चुके हैं, इसीलिए दुख मिलता है, संसार का जो दुख मिल रहा है इसी कारण से। और दूसरा अर्थ में सुख दुख, इंद्रिय जो चाहता है, जो इंद्रिय वस्तु को प्राप्त नहीं होता है तब व्यक्ति दुख महसूस करता है, सही। इंद्रिय तृप्ति में थोड़ी सी बाधा होने मात्र से व्यक्ति दुखी हो जाता है, और इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त हो गया व्यक्ति चाहता है मैं सुखी हूं, व्यक्ति चाहता है मैं सुखी हूं। लेकिन भक्त समाज के लिए यह सुख और दुख का ऊपर उठना पड़ेगा, सुख और दुख का ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवता भक्तिर अहितुकी तोई। भगवान का प्रति प्रीति बढ़ाना है ना, अहितुकी जन्म जन्मांतर तक ये प्रार्थना है। जो अहितुकी शब्द है ना, बहुत सारा जगह में प्रमाण है अहितुकी, कुछ भी हेतु नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हेतु नहीं रहना चाहिए, हेतु रह गया बस भक्ति में रुक जाएगा। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना, कभी भी कोई भी चीज प्रभु से मांगना नहीं चाहिए, और एक चीज मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, भक्ति है। इसलिए जब संसार का लोग भगवान के सामने आते हैं, सामने आके हाथ जोड़ के संसार का लोग क्या प्रार्थना करते हैं और भक्त लोग को क्या प्रार्थना करना चाहिए, ध्यान से सीख लीजिएगा इसको। भगवान के सामने आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए सारा संसार भक्त के लिए, सारा संसार छूट जाए मेरा भक्ति ना छूटे, ये भक्त का प्रार्थना होना चाहिए, सारा संसार छूट जाए भक्ति ना छूटे। लेकिन संसार का लोग जो कर्मी लोग है, जो भक्त नहीं अभक्त है, वो आके भगवान के सामने क्या प्रार्थना करते हैं, भक्ति छूटी जाए संसार ना छूटे। संसार छूट जाएगा तो डर लगता है ना, भक्ति छूट जाए कोई मुश्किल नहीं। इसलिए तो बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, आप उनको थोड़ा माला पकड़ाओ गीता दो, लेंगे क्या, देना बड़ा मुश्किल है। मेरा कड़क शब्द है, मैं उनको सीधा बोलता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सीधा चलता हूं, टेढ़ा नहीं, उनको सीधा बोलता हूं। जानते हैं जब तक व्यक्ति बड़ा पापी होगा ना, इतना पापी होगा वो भगवद गीता को स्पर्श नहीं कर सकता है, वो सोचेगा भगवद गीता स्पर्श कर लिया और जीवन में पाप नहीं कर सकता हूं, सारा पाप कट जाएगा ना। भगवान भगवद गीता में प्रमाण दिया है, गीता को स्पर्श करने मात्र से कितना जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और कभी माला दो, माला भी स्पर्श नहीं करेगा। इस प्रकार लोक भी आते हैं दुनिया में, इस प्रकार के लोक भी है। तब हमें दासत्व को स्वीकार करना, ये दासत्व को जब तक स्वीकार नहीं करते हैं तब व्यक्ति क्या होता है, देहाती बुद्धि में रहने का बात है, क्या होता है, संसार का दुख इसको मिलता है। तब कहते हैं भक्ति एकनिष्ठ होकर करना है, एकनिष्ठ। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 14 में, तस्मा देखे न मनसा भगवान सततम पति श्रोतव्य कृतिर्वेश्य ध्येय पूजिश्य नित्यदा। कहते हैं एकनिष्ठ चित्त से सर्वदा पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की ही लीला कथा श्रवण और स्मरण करना चाहिए। तस्मा देखे न मनसा, मन को हमेशा प्रभु का भक्ति में लगाना है। मन जाएगा प्रभु, इधर उधर जाएगा, लेकिन आपको खींचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, क्योंकि मन हमेशा बदमाशी करना चाहता है, क्योंकि उसका जन्म भी बदमाशी से हुआ। मन हमेशा बदमाशी करना चाहता है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इस सत्ययुग में मन हिलता नहीं था। सत्ययुग में एकनिष्ठ भक्ति करते थे, इसीलिए सत्ययुग में लोग ध्यान करते थे। ध्यान करने मात्र से भगवान सामने प्रकट होते थे, सामने में इमिडिएटली, क्योंकि सत्ययुग में मन हिलता नहीं था। और कलयुग में आप कहां भी बैठ जाओ, थोड़ी से ध्यान नहीं लगता है, लगता है। संसार के लोग एक ही जगह में दो मिनट ही नहीं बैठेंगे, दो मिनट बैठेंगे तो बाहुबली फिल्म देखेंगे, मन इधर उधर भागता है, दो सेकंड भी स्थिर नहीं रहता है। और सत्ययुग में मन, इसलिए कहते हैं कलयुग में मन अस्थिर है, अस्थिर है, लेकिन उसको स्थिर करने के लिए उसको आपको खींचना पड़ेगा, लगाम लगाना आपका तरफ खींचना पड़ेगा। तस्मा देखना मनसा भगवान सततम पति श्रोतव्य कृतव्य, अब बारंबार आपको श्रवण करना चाहिए, बारंबार, और श्रवण का साथ साथ बोलना चाहिए, आपका प्रैक्टिस होएगा। बाई चांस आप लोग जितने सब बैठे हैं सभी लोग एक ही की प्रवक्ता है, सभी लोग आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग बोलते नहीं, आप लोग बोलेंगे तब क्या होगा, आपका मन में आएगा मैं भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि सुनना पड़ेगा, तब आपको बोलने के लिए प्रैक्टिस भी होगा। क्योंकि प्रभुपाद कहते थे मेरा संस्था में जितने भक्त जोड़ते हैं सभी एक एक प्रचारक है, सभी एक एक क्या है, प्रचारक है, एक ही दूसरे को बताना है, तब क्या होगा, कीर्तन होगा, श्रोतव्य कृतित्य ध्येय पूजिष्य नित्यता, तब फिर आपका ध्यान लगेगा भगवान का भक्ति में, भगवान का पूजन में, तब जाके मन लगेगा। ये बारंबार चार चीज आपको देखिए, एक ही है सुनना है, दूसरा है कीर्तन बोलना है, जो सुना है वही चीज दूसरा को रिपीट करना है। हम लोग आप दूसरा से कोई चीज नहीं लेते हैं, ये भागवत को बारंबार रिपीट किया जा रहा है, हमें जो सुने प्रभुपाद, प्रभुपाद का जो शिष्य लोग है कि नहीं, जो हमारा परंपरा में आए जितने गोस्वामी लोग आए, यही सब श्रवण करके तो हम लोग बोल रहे हैं, यही तो रिपीट हो रहा है, और कुछ नहीं बोलने का इसमें, और कुछ आड़ भी नहीं करना है। ध्येय पूजिष्य नित्यदा, और इसमें ध्यान करना है और पूजा, ये चार चीज करने से मन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वशीभूत होगा। फिर दूसरा अर्थ में कहते हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता है इसको बोलने के लिए, तब फिर कहते हैं अन्य कामी यदि करे कृष्ण रभजन नामा गिले कृष्ण तारे देन सोचरण। अन्य कामी यदि करे कृष्ण रभजन, कुछ भी कामना होता है व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है, ना मांगे ले, कुछ भी आप नहीं मांगते हैं कृष्ण अपना चरणों को दे देते हैं। कृष्ण तारे देना सो चरण, फिर भी कृष्ण का भजन करने मात्र से, जो भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कुछ मांगता नहीं भगवान के पास है, फिर भी भगवान का भजन करता है, भगवान अपना चरणों को दे देते हैं। फिर क्या कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख। कृष्ण कहे आमा भजे, जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है और विषय भोग मांगता है, कृष्ण कहते मैं तो मूर्ख नहीं, वो तो मूर्ख है, वो विषय भोग मांग रहा है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं इसे विषय भोग नहीं दूंगा, क्या दूंगा, अमृत छाड़ी विषय मांगे, अमृत को छोड़ के विषय मांग रहा है, ये बड़ा मूर्ख है। तो फिर क्या कहते हैं, आमी विज्ञा यही मूर्ख विषय कहना दिव सोचरणामृत दिया विषय भुलाइव। आमी विज्ञ, प्रभु कहते हैं मैं विज्ञ हूं और वो व्यक्ति तो मूर्ख है, मैं विषय कहना देव, विषय नहीं देना है, क्या देना है, सो चरणामृत दिया, प्रभु अपना चरणामृत दे के उसका विषय को क्या करते हैं, भुलाते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन हम सो चरणामृत जो लेते हैं ना, भगवान का चरण जल, हम लोग भक्त लोग है इसलिए मालूम है हमें चरणामृत लेते हैं, और दोनों में अंतर नहीं है, चरणामृत और अधरामृत। अधरामृत गीता को कहा गया अधरामृत, और भगवान का स्नान जल मतलब भगवान के कृष्ण के चरण से गंगा निकली, इसको चरणामृत कहता है, दोनों समान है। और हमें जब दोनों को पान करते हैं, दोनों पान करने मात्र से हमारा विषय भोग वासना धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होते जाता है, समाप्त होते जाता है। फिर कहते हैं, और वो कम से कम जो कि अनित्य शरीर से नित्य पद को प्राप्त किए, कम से कम 5-6 भक्त जो कि यही शरीर में प्रभु को प्राप्त किए। सभी लोगों को मालूम होगा श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की 72वीं अध्याय श्लोक नंबर 21 में, हरिश्चंद्र रंतिदेव उष वृत्ति शिव बलि ही व्याध कपत बहव हु ध्रुवेण ध्रुवगता। यही शरीर में प्रभु का धाम को गए, यही शरीर में, यही शरीर में अनित्य मतलब नित्य भक्ति करके अपना धर्म को, धर्म को पालन करते हुए कभी जीवन में अधर्म को आचरण नहीं किया। ये 6 लोक है, एक ही हरिश्चंद्र, उन्होंने सत्य वचन पालन पूर्वक रूप धर्म के पीछे अपने स्त्री पुत्र तब तक भी बेच डाला एवं अनंत दुखों के आने पर भी सत्य से विचलित न हुए, अंत में नित्य पद को प्राप्त किया। फिर रंतिदेव परिवार के साथ 48 दिन तक निर्जला रहा रंतिदेव ने, उपवास रहने के बाद उन्होंने कुछ अन्न जल प्राप्त करने पर अतिथियों को भी बांट दिया, उस आतिथ्य सेवा धर्म पालन करने मात्र से ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। अभी तो घर पे कोई भी आ जाता है हमें आतिथ्य स्वीकार नहीं करते हैं, गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि सत्कार करना, कर नहीं कर रहा है। अभी आएगा मेरा टॉपिक एक ही रख रहा हूं, 5 दिन का एक ही टॉपिक है, जो समय नहीं मिलता है बलराम महल पे करने के लिए, हो सकता है रामनवमी का बाद बाई चांस समय मिला तो करेंगे। आदर्श गृहस्थ जीवन 5 दिन का सुनोगे, आदर्श गृहस्थ जीवन में क्या करना होता है, श्रीमद् भागवत की टॉपिक है, भागवत की है 7वें स्कंद की 14 अध्याय, वो है युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं गृहस्थ जीवन कैसा बिताना है, पहला धर्म है गृहस्थ धर्म को कैसा निभाना है, गृहस्थ धर्म को निभाने का पहले रंतिदेव किस प्रकार जीवन बिताया, ये शिक्षा है। फिर आता है उषवृत्ति मृदगल, उन्होंने 6 महीना तक उपवास धारण करके अतिथि का सेवा व्रत किया, अतिथि सत्कार किया, वो भी ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। फिर महाराज शिबी, फिर आ जाता है राजा बलि, सब कुछ समर्पित कर दिया, सभी लोग को मालूम है बलि महाराज सब कुछ समर्पण। इस प्रकार बहुत सारा चीज है, टॉपिक को तो निकालने के लिए बहुत सारा आता है, किस प्रकार हमारा मानसिक धर्म आता है, दैहिक धर्म है, जीवात्मा का धर्म है, लेकिन सभी धर्म का ऊपर है जीव का एक ही धर्म है। भागवत में श्रील प्रभुपाद बारंबार ये श्लोक पर बोलते थे, सबै पुंस परधर्म जतो भक्तिर अदोख्य जय अहितु की अप्रत्यता जयात्मा सुप्रसिद्ध थे। भागवत के प्रथम स्कंद 2 अध्याय श्लोक नंबर 6 ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद कितने बार बोले अहितु की अप्रतिहता। हमारा किसी का चीज का प्रति हेतु नहीं लेना चाहिए, और प्रीति बढ़ाने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, अधोक्य जय भक्ति अधोक्य जय पराधर्म को नहीं, पराधर्म इसलिए कहते हैं सभी पुंस पराधर्म जतो भक्ति, इसलिए प्रीति को बढ़ाना है अधोक्य जय भगवान का भक्ति में कैसा जोड़ना, और भक्ति में जोड़ने के लिए भक्त का संग चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्त का संग। भक्त का संग को कैसा प्राप्त करना है, भक्त का संग से भक्ति का बीज उगता है, भक्ति का बीज उगता है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करना, मेरा कैसा भक्त का संग मिल जाए। बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, उनको भक्त का संग नहीं मिल पा रहा है, रो रहे हैं, और उनको संडे का दिन में भक्त लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद एक ही अच्छा चीज रखा है, संडे क्लास हमारा वृंदावन में नहीं हो रहा है, लेकिन एक संडे क्लास रखा है, संडे क्लास इसलिए रखा है एक दिन में 6 दिन के लिए बैटरी चार्ज हो जाता है, ये सर्व गृहस्थ लोग के लिए बहुत अच्छा होता है, 6 दिन तक तो वर्किंग में जाता है कि नहीं। संडे का दिन जब आता है ना, एक बार गया था मैंने सिंगापुर, उधर सिंगापुर में 2 क्लासेस होता है, एक ही शनिवार और रविवार, 2 क्लास, शनिवार को होता है इंग्लिश क्लासेस और रविवार का बंगाली क्लासेस, वहां पे बंगाली भरे हुए। मैं वहां पे 2 दिन का मेरा क्लास था, वहां पे 2 दिन क्लास दिया था, पूरा हॉल भरा हुआ, उनको मतलब समय, क्योंकि विदेश में क्या होता है समय नहीं मिलता है, और जिस दिन छुट्टी होता है सभी लोग इकट्ठा हो जाता है आराम से सुन के पूरा। कभी कभी भक्त लोग तो रो लेते हैं भक्त का संग के लिए। इसलिए आप लोग सब भाग्यवान है जो कि वृंदावन में बैठ के भगवान का बारे में सुनते जा रहे हो, और फिर भी यही वृंदावन का वास के लिए आपको 2 सेकंड टाइम ले रहा हूं, 2 सेकंड सिर्फ। ये वृंदावन का वास के लिए, ये वृंदावन वास मिलना इतना आसानी नहीं। अर्जुन और कृष्ण के साथ वार्तालाप हुआ था एक बार, अर्जुन जी भगवान कृष्ण के पास बताते हैं और पूछते हैं, पहले बोले ये वृंदावन का वास का अर्थ क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आपको गोलोक वृंदावन दे सकता हूं, गोलोक वृंदावन पहुंचा सकता हूं, लेकिन वृंदावन वास नहीं दे सकता हूं। ये 1 घंटा का प्रवचन है, किसके लिए हुआ बहुत सारा चीज इसमें है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं वृंदावन वास नहीं दे सकता हूं। ये वृंदावन वास करने के लिए आपको स्वयं राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगा, मेरा बॉस की बात नहीं है, राधा रानी फिर भी मेरा बॉस में नहीं है, राधा रानी से प्रार्थना करोगे तो वृंदावन में वास मिलेगा। मैं गोलोक वृंदावन दे सकता हूं, भगवान कृष्ण कहते मैं गोलोक वृंदावन दे सकता हूं, लेकिन वृंदावन वास ब्रजवास नहीं दे सकता हूं, ब्रजवास से प्रार्थना करना पड़ेगा राधा रानी से। इसलिए राधे राधे बोलिए। कभी आएगा तो उसका ऊपर आलोचना करेंगे क्यों हुआ है, कभी समय मिलेगा तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।